اللهم صل على محمد محمد. السلام عليكم أبا.
एक मिनट आप
जी बेटा जी कोई कोई कलाम सुनाना चाहते हैं अपना अब्रार भाई अब्दुल जहरा
जी सलाम अलैकुम। मैं दरअसल मैं भी आपको जो सुनाता हूँ आप बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک نعت کے چند شعر میں بھی پیش خدمت ہے میرے درد دل کی ہے یہ دوا صلو علیہ و آلہ میرے درد دل کی ہے یہ دوا صلو علیہ و آلہ میرے لب پہ بس ہے یہی دعا صلو علیہ و آلہ وہی جو خدا کا حبیب ہے جو صدائے حق کا نقیب ہے وہی مجتبیٰ وہی مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ اور جو کتاب رب کا امین ہے جو حکیم ہے جو حلیم ہے جو ہے آخری وہی آشنا صلو علیہ وآلہ وہ جو دشمنوں پر رحم کرے وہ جو دوستوں پر کرم کرے رہے جس کے پیش نظر خدا صلو علیہ وآلہ جو حریص عفو و کرم رہے وہی جس پہ جور و ستم رہے جو ہے لطف عام کا معجزہ صلو علیہ وآلہ جو صراط رب وہ جو عبد رب عظیم ہے وہ جو فاتحہ کا نعیم ہے جو صراط رب کا ہے رہنما صلو علیہ وآلہ اور مرض ہے کہ شفیع و روز جزا مجھے بخش دے اے خدا میرے اے دعائے جعفر نارسا صلو علیہ و آلہ بر محمد و آل محمد صلوات اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
مفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلا والآخر بلا آخر یکون بعدا الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرين وعجزت عن نعته اوهام الواصفين والصلاه والسلام على جميع الانبياء والمرسلين سيما خاتم النبيين رحمه للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقيه الله في الاراضين، صاحب العصر والزمان، خليفه الرحمن، امام الانس والجان، الذي بيمنه رزق الورع وبه ارتبطت الارض والسماء. اللهم عجل فرج الشريف. دنیا میں جتنی بھی تباہیاں ہیں، خواہ وہ نیچرل ڈیزاسٹر ہوں، خواہ وبائیں، خواہ انسانی بنائی ہوئی جنگیں، نفرتیں، قدورتیں، ان سب کا خاتمہ ممکن ہے. یہ دنیا جو جہنم بنا دی گئی ہے، اس کو جنت سے تبدیل کرنے والا وہ حجت خدا ہے. اس کا انتظار عبادت ہے، اور اس کے لیے دعا کرنا ہمارے لیے شرف ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی مشکلوں کا حل کوئی اور نہیں ہے سوائے زبور کے. ظہور میں دیری ہے ہمارے اپنے کردار کی وجہ سے، تو کردار سازی کے ساتھ فکری اور جسمانی تیاری کے ساتھ دعا بھی بہترین وسیلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا، حتى تسكنه عبدك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وفي القرآن دعا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. جیسے کہ اعلان کیا گیا ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گفتگو ہوگی. آج مقدماتی گفتگو میں یہ جو 2.5 مہینے 3 مہینے کا بریک ہوا، محرم صفر، تقریباً 72 دن مجالسوں کا انعقاد ہوا، اور ہر طرف سے معلومات کا بہت بڑا خزانہ، بہت بڑا ٹریجر ہمارے ہاتھ میں آیا. تو اسسمنٹ کرنے کا دن ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے اس محرم و سفر میں کیا کیا، کیا حاصل کیا. اور اس کے بعد ربیع الاول بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. یہ 3 مہینوں میں سرکار کی ولادت، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت، یہ تمام جو ایام اللہ ہیں، ڈیز آف اللہ ہیں جل جلالہ، اس سے کیا فائدہ اٹھایا ہم نے؟ کوئی بھی انسان ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ محاسبہ نہ کرے. محاسبہ انسان کی انفرادی انڈیویژل لائف میں اس کی زندگی بدل سکتا ہے، اور اجتماعی لائف میں اجتماع کی زندگی بدل سکتا ہے. لم یک مغیر نعمت، اللہ جو ہے کسی نعمت کو بدل نہیں والا نہیں ہے جب تک کہ حتی یغیر ما بقومی، حتی یغیر ما بانفسی، کسی قوم کی کسی کی حالت بدل نہیں سکتی جب تک کہ نفس کو نہ بدلا جائے. یہ ہے کیا یہ نفس؟ خود نفس کی معرفت الگ بار بحث ہے، لیکن یہ کون سی چیز ہے جس سے انسان کمال حاصل کرنے کا جو شوق ہے، وہ کیسے کمال حاصل کر سکتا ہے؟ ایلیویشن اس کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے؟ کامیاب کیسے بن سکتا ہے؟ وہ آیا اس دنیا میں ٹیک آف کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے نہیں ہے. تو کامیابی کا سب سے بڑا گر جو ہے وہ محاسبہ ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ حاسبوا انفسکم فی کل یوم، روزانہ تو محاسبہ کرے. اور پھر وہ حدیث ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اگر کین بزنس مین ہے اور بزنس میں اسمارٹ ہے اور بزنس اس کا ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو اکاؤنٹنٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سی ای او کو, مالک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمپنی کس مقام پر ہے. اکاؤنٹنٹ بتائے کہ تمہاری کمپنی ڈینجر ہے, یعنی اس کی حالت بہت خراب ہے, اس کے معنی کہ وہ بزنس مین نہیں. بزنس مین وہ ہے جو مسلسل اس کی اپنی کمپنی کو برابر اسیس کرتا ہے. انسان سب سے بڑا بزنس کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ سورہ صف کی آیت ہے, هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی. اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی بزنس کی طرف دعوت دیتا ہوں. هل ادلکم, ادلکم دلیل کے معنی یہاں پر گائیڈنس. Could I guide you towards a business and a best business? Allah کہا. Could I guide you? Can I? اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ میں ایسا بزنس کہ اس کے بعد عذاب علیم سے یعنی چسٹس میں پریشانی سے ہونے جاتے ہیں. وہ کون سا بزنس ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم بأموالکم وأنفسکم. تجاہدون فی سبیل اللہ وتؤمنون باللہ. یہ تجارت صاف صاف تجارت ہے. ہم لوگ جو ہیں اراؤنڈ دا بشز جاتے ہیں, ہم لوگ جو ہیں دین نہیں چاہیے ہمیں. ہم جس دین پہ چل رہے ہیں یہ اپنا بنایا ہوا دین ہے, ہمارا خیالی پلا ہوا. میں صاف کہہ رہا ہوں, یہ جو ہم ہماری زندگی, میری زندگی ہے, جب میں ٹیلی کرتا ہوں یہ میری زندگی, آیا اسلام ہے میری زندگی. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو ریکگنائز ریلیجن ہے وہ اسلام. ریلیجن کے بغیر انسان ایگزسٹ نہیں کر سکتا, دین کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. ہر ایک کے پاس دین ہے. دین کیا ہے؟ سلیقہ زندگی, لائف اسٹائل. ہر ایک کی لائف اسٹائل ہے, ہر ایک اپنی زندگی گزار رہا ہے, مگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ ٹیلی کرنا ہے کہ آیا اس کی زندگی اسلام سے منطبق ہے, اسلام سے ٹیلی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. ٹیلی کرتی ہے تو مسلمان ہے, ورنہ اس کا اپنا دین ہے. اس نقطے کو جب تک ہم جائیں, ہم لوگ اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ہماری زندگی میں چینجز نہیں آئیں گے. کتنا یزید ہمارے اندر کا باہر گیا, کتنے حسین ہمارے اندر آئے. یہ چیلنجنگ سوال ہے. ماشاءاللہ پروگرامز ہو رہے ہیں, ان نوجوانوں نے بہت محنت کی ہیں اور بہت سے علماء اسکالرس محنت کر رہے ہیں. بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن خود آرگنائزرز اسیس کرنا ہے, وی آر where did we start, کہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اور ہمیں کہاں جانا ہے اور کس مقام پر ہم ہیں اور کتنا امپیکٹ ہے. آج باطل کی قوتیں اسی طرح سے, اتنا عذاب آنے کے بعد, اللہ کے عذاب آنے کے بعد کوئی چینجز نہیں آئے, نہ ان کے لہجوں میں چینجز آئے, نہ ان کی نفرتوں میں چینجز آئے. ہمارے کنٹریز سفر کر رہے ہیں, انہیں کوئی احساس نہیں ہے. ہزاروں انسان مر رہے ہیں, کوئی احساس نہیں ہے. یمن کی حالت دیکھی ہے. تو ایک تحول, ایک انقلاب لانا ہے. تو انقلاب اندر جب تک نہیں آئے گا میرے اندر, اس وقت تک نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے سب سے بہترین گر جو ہے وہ ہے محاسبہ. محاسبہ کے لیے ہم نے, مجھے اس میں جانا نہیں ہے. مسٹیکل چیز کے ساتھ, عرفان کے ساتھ لوگ بہت زیادہ سنتے ہی مزہ لیتے ہیں, لیکن اٹس اے ٹف چوائس. نہ ہی میں عارف ہوں, نہ ہی عرفان کی دعوت دیتا ہوں. میں عرفان عملی کا قائد, پریکٹیکل مسٹیسزم. इरफान में जब पहली चीज जो बताई जाती यकदा अवेखनी, डीप नींद के बाद जागना है। किस मजलिस ने मुझे जगा दिया, किस प्रोग्राम ने मुझे जगा दिया, किस आलिम ने मुझे जगा दिया, किसने मुझे झिझोड़ा, मुझे पूछना है। नहीं हुआ है तो अब तक मैं क्यों सो रहा हूं। मौला अमीर अल-मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ मैं हमेशा मेंशन करता रहा, मेरी फेवरेट दुआओं में से है। मैं फजर को शुरू करता हूँ इससे है। और कोई चाहता है इंसान हकीकत में अपनी हिफाजत, दिन की हिफाजत वगैरह के लिए, ये दुआ सबाह से बेहतर कोई दुआ नहीं है और बहुत ही गहरी, जो लग अरबी अदबिया से वाकिफ है, अदीब अदबियात की मेराज है। मौला अमीर मोमिनीन ने वहां पर वायकदनी इला मा मनअनी बिही मिन मिननही व एहसान। परवरदिगार ये जो सोया था मैं रात में, तूने जो जगाया है पहले एहसान करके जगाया, यू फेवर्ड मी। पहला एहसान यह है कि तुम मुझे तो रात में ही ले सकता था, रात में खत्म हो सकता था, तूने खत्म नहीं किया। मैं जिंदा हूं, ये जिंदगी खुद जो है एक बहुत बड़ा एहसान। वायकदनी इला मा मनअनी बिही मिन मिननही व एहसान। ये यकदा है, आयकदा नहीं बने, बस जगाया, मारे झिझोड़ा जगाया। सुबह जो उठ रहा है, वरना जो रात में लोग सोए सुबह नहीं उठेंगे, चले गए वो, कुरान की आयत है, वल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा, वल्लाहु यतवफ्फल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा। अल्लाह नफ्सों को ले लेता है जब उसकी उसका वक्त आ जाता है, लेकिन नींद में अल्लाह जो है छुटकारा दे रहा है, नींद को ला रहा है मौत के करीब। तो हकीकत में सोया जो है मौत है, मुर्दा है, जगाया। और एक दुआ है मौला की बेहतरीन दुआओं में से, हर रोज सुबह मौला जो है पढ़ा करते थे। परवरदिगार सबसे पहला शुक्र है कि मैं उठा हूं, आ जगाया तूने। दूसरा ये कि आजाव जवारे सालिम है, इससे बड़ी क्या दौलत, बॉडी सालिम है, क्या जवान। खुदा न खास्ता स्ट्रोक हो गया, खुदा न खास्ता पैरलस हो गया, अल्लाह बचाए जिनको खुदा ने इस इम्तिहान में डाला है, उन्हें सब्र करे, अल्लाह सब्र दे। बहुत गौर करें हम लोग, बहुत ही गौर करें। وَأَيْقَضَنِي إِلَى مَا مَنَحَنِي بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَإِحْسَانِ। उस दुआ में मालिक तूने जगाया, ये जो उठाऊ सुबह ये तेरी इनायत है, और मेरा बदन भी सालिम है, मेरा दीन भी सालिम। सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक गुफ्तगू होगी। सरकार की सीरत में अकवाल में एक चीज मौजूद है, प्रोफेसिस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में प्रोफेसिस है क्या होने वाला है, और सरकार की जबान से और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से, और जितने कहे गए हैं वो पूरे हो रहे हैं। जैसे कि उलमा का कायल है कि जहूर सगरा तकरीबन हो चुका, अब नॉर्मलाइजेशन रिलेशनशिप ज़ायनिस रजीम से, और मक्के में ये यहूदियों का तवाफ खाने काबा में वो कुत्तों की आवाज निकालते हुए, ये तमाम निशानियां। बहरहाल हदीस में है, एक जमाना आने वाला है क्या का ऐसा अंधेरा छा जाएगा का कैद लैलिल मुज़लिम, घुप अंधेरे होंगे, किस अंधेरे की बात, माशाल्लाह आजकल तो लाइट्स मेरे सामने लाइटें लाइट जल रहे हैं, बहुत ज्यादा रोशनी मगर अंधेरा है, घूप अंधेरे होंगे और सुबह मोमिन रहेगा शाम में काफिर हो जाएगा, शुरू करेगा ईमान से और शाम में काफिर हो जाएगा, शुरू करेगा मुसलमान शाम में काफिर हो जाएगा, रात को सोएगा मुसलमान उठेगा तो काफिर है। तकान देने वाले यानी हिला देने वाली यानी झिंझोड़ देने वाली अहादीसों में से अहादीस है। मौला मिल दुआ में फरमान परवरदिगार अलैहि अफजल सलात व सलाम, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जो उठाया है, मेरा जिस्म सालिम है और मेरा दीन भी सालिम है, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग मीडियम है, वसीला है, हमें बता रहे हैं कि हकीकत में जिंदगी क्या है। और उसका एक बहुत ही अच्छा जुमला भी है इसी दुआ में, मौला फरमाते हैं परवरदिगार मेरे नफ्स को पहले ले ले मेरे आज़ा से, यानी मुझे मजबूर ना बना, ऐसा नहीं कि मैं मजबूर पड़ा हुआ हूँ, कोई उठा रहा है कोई बैठा रहा है। तो आज हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो यकादा की है, जागने की है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम समझना चाहते हैं, और सीरत नबी समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि उठें फिर क्या है भाई ये मालूमात और ज़खीरा। माशाल्लाह इतने उलमा, इतनी मजलिसें, इतने इंफॉर्मेशन की भरमार है, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट मेक्स डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है इससे, कितना ही सुबह से शाम तक 500 ये क्या वो ये कैसे ये उनका सुनिए वो यूट्यूब मौलाना वो फलां साहब ने, आजकल तो बराबर फॉरवर्ड हो सकते हैं, इतने फॉरवर्ड होते हैं कि आखिर में इट हैज बीन फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। नतीजा क्या हो रहा है, कौन को देख लीजिए, अपने चारों तरफ देखिए, अपने भाई को देखिए, अपने आप को देखिए, अपनी बहन को देखिए, अपने बच्चों को देखिए, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को अपने बच्चों को आग से बचाओ। यहाँ अनफॉर्चुनेटली आज टाइम चेंज हुआ है और नमाज के वक्त, अब इस वक्त मैं 2-4 मिनट की फज्र की नमाज सिर्फ वाजिब अदा करके आता हूँ, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू बेहद शर्मिंदा हूँ। इस दौरान अगर कोई सलाम वगैरह पढ़ना चाहते हैं पढ़ लो।
एंगेज कर सकते हैं जो सलाम पढ़ना चाहते हैं या कलाम कोई, तो आप लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी ब्रदर अब्रार,
अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मोहम्मद सलावात मोहम्मद, इल्म उनका है, करम उनका है, चाहत उनकी, इल्म उनका है, करम उनका है, चाहत उनकी, और अल्लाह तो चाहता है मवद्दत उनकी, ये वही बोलते हैं जो के वही नाजिल हो, हौज़े कौसर तलक कुरआन से है निस्बत उनकी, और जिनको बेगोरो कफन कर्बो बला में छोड़ा, जिनको बेगोरो कफन कर्बो बला में छोड़ा, सबसे आबाद जमाने में है तुर्बत उनकी, और उसको फिर जानना असबाब ही मतलूब हुआ, उसको फिर जान ना असबाब ही मतलूब हुआ, जिसने एक बार तहे दिल से की बैयत उनकी। और हो खता कार कोई दरपा जो उनके आए, हुर बना देती है दो जग में तो सोहबत उनकी। और हमको कुरान बताता है कि रहमत ये है, हमको कुरान बताता है कि रहमत ये है, एक उम्मत को मिटा सकती है लानत उनकी। और मेहरे ताबा तो जमाने में यही पंचतन है, मेहरे ताबा तो जमाने में यही पंचतन है, रूह को जिंदा रखे दुनिया में सीरत उनकी। और करबला आज भी हम सबको सदा देती है, करबला आज भी हम सबको सदा देती है, हर जमाने को हमेशा है जरूरत उनकी। और उनके किरदार से दुनिया को खबर होती है, उनके किरदार से दुनिया को खबर होती है, दहर उनकी है कयामत में शिफात उनकी। और फातिहा इसकी गवाही के लिए काफी है, फातिहा इसकी गवाही के लिए काफी है, रास्ता उनका बका उनकी हिदायत उनकी। फातिहा इसकी गवाही के लिए काफी है, रास्ता उनका बका उनकी हिदायत उनकी। और अली असगर ने जमाने पर किया है जाहिर, अली असगर ने जमाने पर किया है जाहिर, गर शुजात है तो उनकी है शहादत उनकी। और एक फासिक की ये ख्वाहिश थी कि रुसवा कर दे, एक फासिक की ये ख्वाहिश थी कि रुसवा कर दे, चादरें छीनी गईं बढ़ गई इज्जत उनकी। एक फासिक की ये ख्वाहिश थी कि रुसवा कर दे, चादरें छीनी गईं बढ़ गई इज्जत उनकी। और सर कटाने पर तो आमादा किया करती है, सर कटाने पर तो आमादा किया करती है, सर झुकाने ही नहीं देती है बैयत उनकी। और मुख्तार्ज है कि जाफर हर दौर में एक करबो बला जारी है, जाफर हर दौर में एक करबो बला जारी है, हुर बनाती है जो लौट आए करामत उनकी। इल्म उनका है करम उनका है चाहत उनकी, और अल्लाह तो चाहता है मवद्दत उनकी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
جزاك الله خير. वो मैंने जो जाना था रात ربنا تقبل منا بارا اللہ قبول کرے معاف کریں. تو ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے سیرت نبوی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ان لائف سٹائل. ایک تو سرکار کے اقوال ہیں، سرکار کا عمل ہے، اور سرکار کی تقریر ہے، تقریر کے معنی ہے اکنالجمنٹ. یہ تمام شریعت ہے. سیرت نبی ایک سائنس ڈیولپ ہوئی سرکار ہی کی حیات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کی زندگی کا سلیقہ کیا تھا، طریقہ کیا تھا. اور مینیو ڈیٹیلز ہیں اس میں، ہنڈریڈس آف بکس موجود ہیں، ہر سال اس میں تازگی بخشی جاتی ہے، نئے ڈھنگ سے لکھا جاتا ہے. تو باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ ہوئی جس کا نام ہے سیرت نبی.
और इसका इम्पैक्ट सोशल साइंस पर दुनिया में कितना हुआ है, सिवाय जाहिल, अगर कोई मुसलमान मुसलमान उसको नहीं कही जो कुरान का इनकार करे, वो मुसलमान कहाँ है, काफिर है, अकफर है, और बहुत बुरी तरह इख्तिताम होगा उसका, जिंदगी का इख्तिताम गलत होगा। वो कुरान की आयतों को निकाल करके कुरान छापे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। और ये कुरान 1400 साल से अनटच्ड है, अल्लाह ने जो है वायदा किया है इस कुरान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। ला यातिहिल बातिल, और एक कोई बेवकूफ अपनी शोहरत दौलत के लिए कोई कर रहा है तो उसके पीछे ना पड़िए, उसके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं। और उसने गुस्ताखी अब जो है सरकार की जात पे किया है, इससे पता चलता है कि इंशाल्लाह वह कफायना कल मुस्तहज़ीन। ज़ात परवरदिगार कहता है कि तेरी जो मुकरी करने वाले हैं करते रहे, लेकिन तुझको हमने उन तमाम से पाक पाकीज़ा रखा है और हम तेरी हिफाजत करेंगे। कफायना का यानी हम तुम्हारी किफालत करेंगे, तुम्हारे नाम पर तुम्हारी जात पर तो ये हमला हो ही नहीं सकता। बहरहाल वाला ये मौजू है, ये गुस्ताखियां थी और होती रहेंगी और बहुत बहुत बुरी मत मानने वाले। अल्लाह की पनाह मांगना है, वही जो मौला ने फरमाया सुबह मोमिन रहेगा शाम में काफिर हो जाएगा, ये लोग वही है। और हमें भी पनाह मांगना है, अगर सियादत का नाम उसके साथ लगा हुआ है शर्माना चाहिए। बाहर देखिए दी हंड्रेड के नाम से किताब है, दी हंड्रेड, और 70s में लिखी गई, 1978 में लिखा है बाय माइकल हार्ट, दी हंड्रेड ए रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री। न्यूयॉर्क में बैठा हुआ एक शख्स क्राइटेरिया बनाता है, मेयार बनाता है कि एक सक्सेस का मेयार क्या है, उसकी अपना बनाया हुआ मेयार जो उसने स्टडी किया है, और बनाने के बाद तलाश करता है हिस्ट्री में इन्फ्लुएंशियल इंसान कौन है जिसने सोसाइटी में बहुत ज्यादा असर रखा है, और मजबूर होता है सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों जाने कुर्बान जिसकी जात पर आपको नंबर वन रखे। किताब पढ़िए जवान बच्चे, सिर्फ सुनने की आदि मत रहिए, किताबों को पढ़िए, ऑनलाइन मौजूद है बहुत। आज का जमाना आपको अगर पैसे नहीं है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। दी हंड्रेड अ रैंकिंग ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्संस इन हिस्ट्री, दी हंड्रेड में नंबर वन जिनका नाम देता है वो सरकार रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर हो जाता है। तो इन्होंने जो मेयार बनाया है, दुनिया ने मेयार बनाया है, उस मेयार के एतबार से एन एस्ट्रोफिजिस्ट है, पढ़ा लिखा इंसान है, और ने रिसर्च करके ये किताब लगाया, और उसकी किताब शायद उस जमाने में कोई छापने लगा तो उसका बाप खुद जो है पब्लिशर था, तो न्यूयॉर्क में छपी है और उसके बाद कई मतलब छपी है। जरूर पढ़िए, और इस जबूर पढ़ने के बाद इसको भेजिए, तब थप्पड़ मारिए वो शख्स जो सरकार की जात पर हमले कर रहा है। एक नॉन मुस्लिम मजबूर हो जाता है सरकार की सीरत को देख करके कि ये कितना इन्फ्लुएंशियल शख्स है। बहरहाल अल्लाह के बना मांगना है और अल्लाह से दुआ करना, परवरदिगार ईमान पर अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअल, बेहतरीन दुआ का टुकड़ा अल्लाहुम्मा जअल अवाकिब उमूरना खैर, परवरदिगार आखिरी जो उमूर है हमारे उनको खैर, यानी आंख बंद हो मौत हो तो ईमान पे मौत, इसलिए कि इतने डिस्ट्रेक्शंस हैं। अगर कभी इंसान का ईमान ना हो, रोजाना उसको बाकायदा मुहासबे के जरिए से सही ना करे तो बर्बाद हो जाए। तो हम आज जो हैं इस मकाम पे छोड़ते हैं एक ही चीज को बयान करके, सीरत में इंशाल्लाह शायद मेरे पास चार संडेज हैं, उसके बाद फिर मेरा सफर शुरू हो रहा है शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मखसूसी के सिलसिले में। हर साल हम नहीं जा सके, जो हर साल जाते हैं 97th ईयर है तकरीबन, सेंचुरी से करीब शुरू हुआ था, मेरे वालिद ने शुरू किया था, अलीपुर में, तो उसमें ब्रेक होगा। तो ये 4 हफ्तों में हम सरकार की सीरत से मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे, मगर आज पहली चीज जो बयान करनी है सरकार की सीरत में वो है सरकार का चेहरा सूरज ही मांगे। मैंने हमेशा मुस्कुराते थे, आप जानते हैं मगरबी दुनिया में एक अरे वे वो शख्स वन ऑफ द किसी की इंसान की तारीफ करते थे, ही इज ऑलवेज ही स्माइल्स, स्माइलिंग फेस। और किस आलम में मा ओ दिया नबीयन कद, तो किसी नबी को इतनी तकलीफ नहीं, किसी नबी को इतनी, यानी सरकार का कौल है 1,24,000 अंबिया में किसी नबी को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मुझे तकलीफ, यानी किसी नबी को इतनी अजियत नहीं दी गई उसकी कौम की तरफ से जिस तरह से मुझे अजियत दी। यह हदीस है, और इतनी अजियत होने के बाद लेकिन चेहरा आपका, जब निकलते थे घर से बाहर, जब मजमे में होते थे, चेहरे से मालूम नहीं होता था कि इसके पीछे कितने मसायब हैं। हमारे पास थोड़ी सी चीज होते हमारे चेहरे लटक जाते, हमारे चेहरों से भी पता चल जाता है कि समथिंग इज रॉन्ग, इसलिए कि फेस इज द इंडेक्स। लेकिन ये कौन जात है जिस पर मुसीबतों की पहाड़ टूट रहे हैं लेकिन चेहरा उसका मुस्कुरा, उसकी सीरतों में है। तो अगर हम लोग मुस्कुराना सीखे, मेरी बहन, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे, मेरी माएं घरों में टेंशन को खत्म करें मुस्कुराहटों से, जिंदगी में गहमा गहमी है, जिंदगी में अब उतार चढ़ाव है, जिंदगी में अब अपहिल बैटल है, तमाम चीजें हैं, ये जिंदगी है ही है इस तरह से। हदीस कुर्सी में हमने राहत दुनिया में रखी ही नहीं, तलाश क्यों करते हैं? हाँ जरा सा सुकून मिल सकता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब। इंशाल्लाह सवाल जवाब होंगे, तो मैं ये जो आज की ये जो पहली सीरत जो बयान कर रहा हूं मैं, सिर्फ सुन के खत्म मत कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए। पहले महासभा पे गुफ्तगू हुई या कदा पे गुफ्तगू हुई, महासभा असेसमेंट या कदा अवेकनिंग, अपने आप को सेल्फ अवेयर अवेकनिंग, उसके बाद फैमिली अवेकनिंग, उसके बाद सोशल अवेकनिंग, अवेक करें अपने आप को, बेदार करें, बेदार हो जाएं, फिर मुस्कुराना सीखें। कुछ भी हो जाए लेकिन चेहरे से मुस्कुराहट खत्म नहीं होना चाहिए, कितनी बड़ी बात है। यानी सीरत में फरमा रहे कि मुझ पर सबसे ज्यादा जुल्म, मैं सबसे ज्यादा अजियत से गुजर रहा हूं, लेकिन चेहरे से मालूम नहीं है। 8 साल के अरसे में नियरली 80+ जंगे हैं मगर चेहरे पर व्हाट इट इज, क्या है ये? बाज वक्त पत्थरबाजी हुई, शहजादी फातिमा का बचपना है मक्के में, मक्की जिंदगी में जब तबलीग करके बाहर गुफ्तगू के अंदर आते थे, जख्मों से पत्थरों से लोग मार रहे, बच्चों को कह दिया गया है, और शहजादी नर्सिंग जैसे है बाप के जख्म को साफ। मगर इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुरा। अच्छा ये जख्म तो है ठीक है, पत्थर लगा चंद दिनों के बाद मुंदमिल हो जाता है, लेकिन जो जख्म जबान है, इस्तेहजा है, मोकरी जो की गई है, इट्स अ टफ चॉइस। अगर हमें कोई एक जुमला कह दे तो हम बात नहीं करते। या हसरतन अलल इबाद मा यातीहि मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, वाह हो इन बंदों पर جب بھی نبی آیا اس کا استہزاء کیا, سب سے زیادہ استہزاء مجنون ہے دیوانہ ہے, استغفر, مجنون ہے دیوانہ ہے, اور سحر ہے, اس کے پاس جادو ہے. لیکن اسٹیڈ فاسٹنس, یہ مسکراہٹ, یہ پیروں پر جمع دینا, یہ پیروں پر سبرنس, یہ بتا رہی ہے کہ انسان ان منازل کو حاصل کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے وہ کامیاب زندگی, وہ کامیابی کے لیے آئیڈیل بن جاتا. اٹس سو بیوٹیفل. امید ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے, اور امید ہے کہ ہم لوگ دین کی ان باتوں کو ذرا سیریس لیں گے. یہ خواب غفلت میں جو پڑے ہوئے ہم لوگ مسلمان, مسلم امت, اب امت کا تصور بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس لیے کہ فیملی میں ڈیٹیریشن ہے اپنے ہی چاروں طرف. ایک عالم کو بیان کرتا, فوراً اس کے خلاف لوگ, ایک کھلبلی, ایک عجیب عالم. بہرحال مسکرانا سیکھے. اس حدیث کے ساتھ میں چند جملے, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے, تو اذیتیں جہاں سرکار کو جسمانی دیں گی دی گئیں, روحانی اذیتیں دی گئیں, وہاں صرف یہ بھی اذیت ختم نہیں تھی, معلوم تھا کہ اس کے آپ کے بعد کیا ہونے والا. وہ اذیت روایتوں میں ہے کہ سرکار کی صحت یتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ سرکار نے آخری 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے مولا علی سے فرمایا اور فضل ابن عباس سے فرمایا کہ مجھے مسجد میں چلو اور اعلان کرو اذان دی جائے. میں ایمرجنسی جب میٹنگ ہوتی تھی, اذان ہوتی تھی, بے وقت اذان, سارا مجمع, سارا مدینہ, وہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے آج. اور جو سرکار کا ایک ہاتھ مولا علی, سیدھا ہاتھ مولا علی کے گردن پر, اور بایاں ہاتھ فضل ابن عباس, دونوں کزن ہیں, ایک تو داماد ہیں, ایک کزن, اور چل رہے تھے سرکار تو پیر زمین پر خط دے رہے تھے. یعنی اتنے کمزور ہو چکے. ممبر پہ جاتے ہیں, کتنی اذیت کا تصور ہے کہ سرکار رسالت ماں انی تارکم فیکم ثقلین, کئی مرتبہ اس حدیث کو بیان کر چکے, مگر آخری زمانے میں, پھر آخری بیان میں, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں, یہ قرآن ہے اور میرے اہل بیت, اسی کو وصیت کرتا ہوں, وصیت کر میرے اہل بیت, میرے اہل بیت. ان کا خیال رکھو, ابھی کفن میں لانا ہونا ہونے پایا تھا. فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا, علی کو مرثیہ پڑھنا پڑا, فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا, میں نے اس عالم میں صبر کیا ہے. میرے آنکھوں میں تیر, میرے گلے میں ہڈی. شہزادی فرما رہی ہیں ایسا سب, ایسی مصیبتیں کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو شبائیں تاریخ بدل جاتی. شاہ سرکار دیکھ رہے تھے میرے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوگا. شاہ سرکار کو ان شاید یقین ہے سرکار سامنے لا رہے ہیں, अपने जाने से पहले घर जल रहा है, दरवाजा गिर रहा है, मुसलमान, और फिर मंजर कर सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين एक सूरह अलहम तीन इखलास है इतरत बतूल बिनत सैयद मज़ाहिर हसन नकवी फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर सवाल है तो हैंड रेस कीजिए ताकि पता चलेगा।
जज़ाक अल्लाह जी, जो लोग सवाल कर रहे हो अपना सिटी मेंशन कर दीजिए। जी
अस्सलाम वालेकुम अबा जान।
वालेकुम सलाम।
हम सरगोधा पाकिस्तान से बात कर रहे हैं
जी।
हमारा सवाल ये है कि हमारे यहाँ मिंबर पर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह से बयान किया जाना चाहिए था उस तरह से नहीं किया गया
जी।
तो ऐसा क्यों हुआ?
नहीं किया गया, नहीं किया जा रहा है आज भी।
जी बिल्कुल, ऐसा हुआ क्यों?
मैंने इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह जो है, चूंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम पे जो जुल्म, सबसे बड़ा जुल्म जो है, उनके सीरतों को छुपाया गया, उनकी जिंदगियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई, जो उसके रिएक्शन में बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी को जो है आगे बढ़ाया गया, ताकि दुनिया जो है रोशन, दुनिया को रोशनास किया जाए। अब जमाना है कि हम लोग से, इसीलिए हमने कहा कि ये रिवाइवल में बेहतरीन मौका है, इस पर काम करें और इंशाल्लाह कोई बात आगे बढ़े। अब बहुत चीज़ें, इसके कई वजूहात हो सकती हैं, उनमें से एक वजह ये है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हालात बदल रहे हैं, तस्किरा हो रहा है, जिक्र हो रहा है, होगा, इसलिए कि अल्लाह ने वायदा किया है कि जो भी उसका जिक्र बुलंद करता है, उसका जिक्र अल्लाह बुलंद। सबसे अहम चीज सरकार के सिलसिले में, जहां अल्लाह की शहादत, अल्लाह के वहदानियत की गवाही दी जाती है, वहां सरकार की रिसालत की गवाही, कि ये इंशाल्लाह होगा, दुआ करें।
आगे जान अहले बैत के हवाले से भी, मतलब जो चीज बताई जानी चाहिए थी वो नहीं बताई गई, मसाइब तक और फजाइल तक ही महदूद रहे, जो मकसद है वो तो कहीं रह गया ना।
नहीं, असल में फजाइल मसाइब में भी जो है, जो दर्स व तदरीस के जो रुख हैं, उनवानात हैं, उन पर तवज्जो नहीं दी गई। शायद उसकी वजूहत कई है। देखिए, इंसान है रिएक्शनिस्ट, जिन माहौल, जिस माहौल में रहता है उसको रिएक्ट करता है। एक जमाना है इंडिया में तबर्रा एजिटेशन हुआ, बहुत ही सख्त, मुझे नहीं मालूम जरूरत, उस पर जरूरत है, मुझे बहस नहीं करना है, लेकिन उस वक्त की जो हालात कुछ ऐसे थे, शायद वो नीडेड टाइम था, लेकिन आज के हालात के अतबार से जरूरत है कि इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के इन तमाम रुखों को बयान किया जाए, जो आज हमारी जिंदगी के लिए मशाल रहा। मसलन करबला के मसायब को भी जो है, कई मिन्यूट डिटेल्स हैं जिस पर आपने टच तक नहीं किया, करबला की हिस्ट्री को भी इंशाल्लाह। इसके इसके पीछे मुमकिन है कि दुश्मन का भी हाथ रहा। छोड़ दीजिए अहले बैत, खुद कुरान से मुतालिक काम करते हो, कुरान की तफसीर से मुतालिक काम करते हो, कुरान से मुतालिक क्या काम हो? तो जब कुरान भी, इसीलिए कुरान ही कहता है, वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखदु हादल कुरान महजूर। ये रियालिटी कुरान बयान कर रहा है, सूरह फुरकान 25वां सूरह है, आयत नंबर 30, मेरी कौम ने इस किताब को फोर सेकंड बना दिया, महजूर बना दिया, इत्तखदु महजूर, इन्ना कौमी, मेरी कौम, मुसलमानों ने। आज हमारे पास कुरान है, जितना रेफरेंस आज गूगल और यूट्यूब का है कुरान का नहीं। हमारी जिंदगी में कुरान है नहीं। जब कुरान महजूर है तो अहले बैत में महजूर, इसलिए कि लई अफ्तर ये दोनों कभी जुदा होने वाले नहीं। देख रेवोल्यूशन की जरूरत है, हो रहा है इंशाल्लाह, अल्लाह का दिन अल्लाह बचाता है किसी ना किसी के जरिए।
जी एक रीजन जो आपने बयान किया था बर्रा, और फिर जाहिर चाहने वाले जो हैं वो बस इसी पे लगे रहे कि हम उनके साथ
जी
खड़े
अभी
हैं।
तक भी उसी में, अभी तक भी बहुत से लोग उसी में चिपके हुए।
जी जजाक अल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम, आदा आभार अर्ज कर रहा हूँ।
जी वालेकुम सलाम जी।
आपकी गुफ्तगु जिस में चल रही थी, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसानी के सवाल करना। जब हमारे पास हादी बरहक कुरान मौजूद है और ये उस पूरी सीरत को बयान करता है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इतरत अहले बैत जो है वो लेके चले, सबसे पहले तो सवाल ये है कि क्या ये मुझ जैसे शख्स को समझ आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये ज़िमनी सवाल है। असल सवाल ये है कि आपने बीच में गुफ्तगु में जो जिस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि जब कोई पढ़ता है और पढ़ने वाले को जो है लोग निशाने पे ले लेते हैं, जद पे ले लेते हैं और उसके खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं, जब कोई पढ़ने वाले से ये वजाहत चाहता है कि आपके पढ़े हुए को कुरान पर पेश किया जाए तो ये कुरान से मुतजाद नजर आता है, तो फिर उस सवाल करने वाले को भी जद पे ले लिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला कुरान को समझा नहीं गया, कुरान को छुआ नहीं गया, कुरान को उठाया नहीं गया। कुरान जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हारे फहम फरासत के लिए नाजिल की गई, सूरह ज़ुमर में तो बताया गया तीन गिरोहों के लिए नाजिल की गई, उनमें हम भी मौजूद हैं। जब हम इसके मुतालिक पूछते हैं कि पढ़ने वाले से कि आपने ये जो गुफ्तगू की ये कुरान में कहाँ है, मसलन हमारे यहाँ या अली मदद को राइज कर दिया गया, उलमा चुप रहे और यह हद पहुंच गई कि लोगों ने अली रब के नारे लगाने शुरू कर दिए उस खामोशी की वजह से, उन हदूद को हम कैसे जो है कुरान के जिम्न में हम सवाल करें, तो हम किस तरह से सवाल करें कि पूछने वाला जो है वो सही तरह से पूछ पाए और जवाब देने वाला भी जज्बाती ना हो। हमें कुरान से वाबस्ता किया गया और हमने कुरान को छोड़ दिया, उलमा ने भी कुरान को छोड़ दिया। आधा दिन बयान किया जाता है, लकत काना लकुम फी रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना बयान की जाती है, लेकिन अगले का जो अगला अहम हिस्सा है लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, इसका जिक्र भी नहीं होता।
जी
अधूरा दीन दिया जाता है स्टेज से किबला, इसको किस तरह से दूर किया जाए, हम अपनी तरफ से और उलमा अपनी तरफ से। जी जज़ाकल्लाह।
जी पहले वो ज़िमनी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब ज़िमनी सवाल, कुरान आज भी हादी है, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अहवन, और आज मगरबी दुनिया में अमेरिका की स्टैटिस्टिक है सालाना 20,000 मुसलमान नए हो रहे हैं इसी कुरान को सिर्फ तर्जुमा पढ़ के, सिर्फ तर्जुमा पढ़ के। हम लोगों ने तो तर्जुमा भी नहीं पढ़ा है अभी तक, कुरान को हाथ नहीं, हमने छुआ नहीं है। कितना पॉपुलेशन है हम जो कुरान पढ़ते हैं, हम 15 साल से सारे वर्ल्ड वाइड में ये कहता आ रहा हूँ, सभी आप लोग शुरू करें 10 आयतों की तिलावत से। इसी प्रेजेंटेशन में, इसी रिवाइवल में हमने इब्तिदा में शुरू किया था, हर वक्त ना प्लीज 10 आयत, कोई भी मैसेज खोलिए नहीं जब तक कि अल्लाह का मैसेज ना देखे, 10 आयत पढ़े और फिर देखें कि अपने वजूद में कितना नूर आएगा और कितनी तब्दीली आएगी। अगर हो सके डिनर टेबल पर बाप एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, माँ एक आयत पढ़े तर्जुमे के साथ, और पूरा घर पढ़े और उसके बाद देखें एक साल के बाद कितना नूर है। हदीस में मैं, चूंकि ये ज़िमनी सवाल का मुझे जवाब बहुत जरूरी है, हदीस में है नव्वरु कुबूरकुम नव्वरु बुयूतकुम बितिलावतिल कुरान, अपने घरों को कुरान की तिलावत से मुनव्वर करो। तुम घर मुनव्वर नहीं है हमारे, घर में हमारे पास लाइट नहीं है, लाइट योर हाउसेस विद द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान। उसके बाद की ला तजअलुहा कुबूरन, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, तो मतलब जिसके घर में कुरान की तिलावत नहीं हो रही, वो कब्रिस्तान है, घर नहीं है। उसके बाद कुरान हदीस आगे बढ़कर ये कहती है कि कमा जालो, कौन किसने किया, यहूद नसारा ने, वो लोगों ने कनीसा में भी में अपने सनीगाग में पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, घर में नहीं करते। कुरान कहता है बुयूत फी बुयूत इन उदन अल्लाह यज़करा फी, कुछ ऐसे घर हैं जहां पर अल्लाह ने इजाजत दी है कि वो घर में। उसके बाद इसी हदीस को आगे बढ़ाकर जिस घर में तिलावत होती है आसमान वाले जब उस घर की तरफ देखते हैं तो वो सितारे की तरह चमकते हैं। जिस तरह से हम बैठे हुए ऊपर देख रहे सितारे हैं, अगर आसमान वाले जमीन की तरफ देखते हैं, कुरान जिस घर में पढ़ा जा रहा है वो घर सितारे की तरह चमकता है। वो घर जरूरी नहीं है कि कैसल हो, घर झोंपड़ी क्यों ना हो सकता है दरख्त के नीचे उस जिसने घर बसाया। तो कुरान महजूर, मैंने अभी मेरे बयान में बताया था कि सूरह फुरकान की आयत पर साफ कुरान कह रहा है कि महजूर है, को सरकार ने गिला किया है। अव्वलिन महजूर है रिसाइटेशन में, अव्वलिन पहला मरहला, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो समझेंगे नहीं क्या, जब पढ़ा ही नहीं गया तो समझेंगे क्या, नहीं पढ़ा गया। नंबर टू, पढ़ा गया भी तो आगे बढ़ने के लिए समझने की बात थी, समझा नहीं गया। नंबर थ्री, थर्ड स्टेज में कंटेम्पलेशन नहीं हुआ, फिक्र नहीं की गई, और आखिर में अमल नहीं हुआ। फिर जब अमल नहीं हुआ तो सोसाइटी में कुरान नहीं लाया गया। ये फाइव स्टेजेस जो है महजूरियत, फाइव फिफ्थ स्टेज में कब जाएगी, जब हम लोग पहले स्टेज को पास करें, रिसिटेशन में फेल हो गए। तो ये आज भी ये कुरान हादी है, हिदायत करता है। और कुरान ने ये भी बता दिया है दो चार आयतें पढ़ करके बगैर नॉलेज के, बगैर इसके बक बक करने के बजाय, तुम जो है फसल हो अहल दिक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर इल्म नहीं है तो ता इल्म हासिल करने वालों के पास जाओ पूछो, और वो इल्म हासिल करने वाला अगर सेटिस्फाई नहीं करा दे रहा, फौक फी कुल इल्म दी इल्म आलिम, हर एक इल्म के ऊपर एक आलिम है, घबराओ नहीं, और फौरन ही जज मत करो किसी शख्स के किसी इल्म के से मुतालिक। ये कुरान ने तमाम गाइडेंस दी हैं, और गाइडेंस को ये आदमी थोड़े चंद आयतें पढ़ के याली कहना बिदत है, वो कहना बिदत है, नहीं भाई, हमने पहले वो सूरह अलहम की हमने तफसीर की है, उस वक्त देख लीजिए ये जो रिवाइवल शुरू है पार साल, उसमें हमने पहले पूरी तफसीर सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, इबादत परवरदिगार हो रही है इसमें, उन लोगों का तस्करा सुन रहे हैं, याद कर रहे हैं जिन पर तेरी नेमत नाजिल, अल्लाह की इबादत में बीच में क्यों लोगों को घुसेड़ रहा है खुदा, यही या अली है, यही या मोहम्मद है। हम लोग किस दुनिया में फंसे हुए हैं, हम लोग एक अपना सेटअप माइंड बनाते हैं, माइंड बना करके उसके बाद उसी पे काम करना चाहते हैं, जी नहीं। आई हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड, और हर मरतबा इल्म मिलने के साथ मुझे बढ़ना चाहिए, तब कहीं मैं जा तरक्की कर सकता हूँ। मैं जैसे ही क्लोज कर लिया, किसी ने दो चार तकरीर सुन कह दिया या ये इमाम जमाना नहीं है, ये शक मशकूक चीज है, ये याली कहना सही नहीं है, फौरन हमारे जहन में आ गई बात, नहीं भाई जरा सा समझो समझो। एक्सट्रीम ये रब कहना, अल्लाह कहना, ये शिर्क है। इसमें खुद मौला अमीर मोमिनीन आपकी नमाज के अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये उबूदियत थी जो सर्वेंटहुड थी जो गार्डहुड तक ले गई। उसी तरह से मौला अमीर मोमिनीन अलैहि अफजलुस्सलातु वस्सलाम ने खुदूत में मिन अब्दिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, पहले मैं अल्लाह का बंदा हूं फिर अमीरुल मोमिनीन। अगर हम कंप्रिहेंशन पूरे जवानी को देखने के बाद नहीं आगे बढ़ेंगे, ये तबाहियां होती रहेंगी। और आज बैठे हुए बाकायदा मिशन चला रहे हैं इस अरे भाई इसमें तुम क्यों पड़े हुए। और एक आयतुल्ला सिस्तानी की अभी हाल में जो दो साल तीन साल पहले मुहर्रम से पहले एक सात आठ जो है गाइडलाइंस थे, उनमें से एक गाइडलाइन ये थी कि किसी खतीब के सिलसिले में तुम बयान मत करो, तुम्हारा उल्लू ठीक करो, दूसरे का कबूतर बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये अब क्यों पड़ी है कि फलाने ने क्या किया, अगर किसी ने किया तो जाओ बात करो, हिम्मत है। और तुम जो दलील पेश कर रहे हो ना, कोई दलील ही नहीं उसमें, कोई दम ही नहीं है। तो बहुत ही खतरनाक माहौल में गुजर रहे हैं। और इस एजुकेशन इस दुनिया में जब टेक्नोलॉजिकल दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, इस जमाने में लकीर के फकीर रहना और सेट अप माइंड बना देना दी बट दिस इज इट इज अ वेरी डेंजरस पॉइंट इंशाल्लाह।
चलिए
अस्सलाम वालेकुम।
तो यानी हम जब सवाल करें जी
बोलिए
जी जी हम जब सवाल करें तो हमारा सवाल जो है वो दलील पर मबनी होना चाहिए है, और जो है हमारा इल्मी मर्तबा जो है सवाल करने के बराबर होना चाहिए, या जो
नहीं,
है
हम सवाल के लिए कोई
सवाल करेंगे और जवाब देने वाला अपनी इल्मियत के मुताबिक जवाब देंगे।
नहीं, ऐसा नहीं, सवाल के लिए
जवाब करना,
सवाल के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जवाब देने वाला सबसे पहले जो अल कुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल कुरान, कुरान कहता है कि इमाम कहते हैं कुरान में देखो, कुरान कहता है कि इमाम से पूछो, ये पूरे लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब लितुबय्यन लिन्नास मा नुज़िला फीह, हम कुरान नाजिल कर रहे हैं हर एक के पल्ले पढ़ने वाली नहीं है। यू बिकम मुबय्यिन, यू बिकम मैनिफेस्टर ऑफ दिस कुरान, मुफस्सिर, पहला मुफस्सिर सरकार, फ्रेश फर्स्ट हैंड फ्रेश इस सरकार रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताहिल भी उनके हाथ में, तफसीर भी उनके हाथ में। कुरान ये कह रहा है हर एक के पल्ले पढ़ने वाली नहीं है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये दो एक आदमी बैठा हुआ बम्बार्डमेंट कर रहा है किसी के खिलाफ, उसके बजाय तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कुरान से अहादीस से पेश करो, और किसी में दम है तो सवाल करेंगे, सवाल का जवाब भी कुरान से लो, और जवाब का सेटिस्फेक्शन नहीं है तो जाइए दूसरे वाले में मौजूद है। फौक कुल्लती इल्मिन अलीम, हर एक इल्म के ऊपर ऊपर आए। जी हाँ चलिए,
अस्सलाम वालेकुम आगा।
वालेकुम सलाम
आगा, मेरा सवाल है कि बहरहाल ये बज़ाहिर तो मौजू से मरबूत नहीं है, लेकिन इसकी शाखें कहीं ना कहीं हमारे मौजू से मिलती हैं। जैसे मेरे नज़दीक अगर आज के जो आदिल फुकहा हैं इनका अगर दामन पकड़ लिया जाए तो ये दर अहले बैत तक पहुंचा देंगे, और मेरे जो अहलो अहबाब हैं, मेरे घर वाले हैं, इनमें से ज़्यादा तो गैर मुकल्लिद हैं, और उन्हें मैं अक्सर कायल करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम सिर्फ इतनी कामयाबी मुझे हासिल हो चुकी है कि वो सिर्फ एक कदम दूर है निज़ाम तकलीद को एक्सेप्ट करने के लिए। तो वो एक सवाल रह गया था जो उस पर थोड़ा सा मैं भी अटक गया था, तो मुझे किसी आप जैसी शख्सियत की तलाश थी कि मैं जिनसे ये सवाल पूछ सकूं ताकि उनकी भी क्लैरिटी हो सके और मेरी भी। उन्होंने मुझे भी ये सवाल किया था, फिर वीडियोज़ भी दिखाई कि आयतुल्लाह उज़्मा बशीर नजफ़ी साहब का जो फतवा है जंजीर ज़नी के मुतल, उन्होंने अपने फतवे में इसे तो इंतहाई एक अहम आज़ादारी का जुज़ करार दिया है और रहबर मौज़म ने इससे रोका है। तो उस वीडियो में नजफ़ी साहब ने कुछ ऐसा लहजा इख्तियार किया है कि वो रहबर मौज़म की शान में गुस्साखी मालूम होती है, जैसे उन्होंने फतवा दिया है कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जो तुम्हें कमाज़नी से रोके उसे कम से कम यह कहो कि मैं तेरे सर पर नहीं मारा। अब जाहिर सी बात है रहबर की शान में अगर उनके सामने कोई ऐसा कोई जाहिल आदमी ये सवाल कर दे कह दे तो बड़ी तोहीन हो जाएगी इससे। तो इतने बड़े मराजे उजाम अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर वो थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, समझ नहीं आती हमें भी।
आप कह रहे हैं हमारे नजदीक अल्लाह ने आपको अक्ल दी है, बड़ा वो होता है जो अपने अपने दीन को दीन की तारीफ करता है, दूसरे पर कोई हमला नहीं करता। महाराजे इसीलिए स्पेशलाइजेशन है, डॉक्टर है, आपका फैमिली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, जाइए फॉलो कीजिए, अगर कोई तकलीफ कर रहा है उनकी फॉलो करें। उनको किसी को हक नहीं है कि फौर ये कह दे कि ये मेरा फतवा सब लोग को सब मान लें, क्यों माने मैं किसी के हुक्म आपके खिलाफ। मेरा सिंपल जवानों से कहते हैं कहता हूं मैं सर, करबला का वाक्य 60 हिजरा में हुआ और 61 हिजरा 60 के बिल्कुल इब्तदा में, और इमाम ज़माना की जो गैबत सुग़रा है 260, इसके माने के 200 ईयर्स नौ इमाम थे, नौ इमामों ने जिस तरह से आज़ादारी की है वो असल आज़ादारी है, उस आज़ादारी को जिंदा करना आपका भी फरीज़ा है मेरा। आगे बढ़िए
जी आगा, बिल्कुल, लेकिन जो उनके मुकल्लदीन हैं उनके
नज़दीक तो नहीं चाहता कि ये उनके मुकल्लदीन वगैरह हम ये मसले को लाना ही लाइए नहीं, इसलिए कि इसमें हम लोग घिरे हुए हैं, इसका कोई फायदा वाहिद चीज है कि जो लोग तकलीफ करें फॉलो करें खत्म, अगर आप ड्राइवर की तकलीफ तो ना फॉलो करें तो खत्म, इन चक्करों में जाए ही नहीं, इसमें हम लोगों को उलझा करके असल हमारे मकासिद दीन खत्म हो जाते।
जी मेरा बुनियादी सवाल जंजीर जनी नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अगर उनके मर्जा ऐसा फतवा दे दें जो है ही गलत, लेकिन उनके मुकल्लिदीन अगर उस फतवे को फॉलो करें तो क्या उन्हें अजर मिलेगा इस चीज का?
अब अजर मिले या ना मिले, हमें यकीनन ये यकीनी है कि जो उनके फतवे को सुन करके उनकी तकलीद कर रहा है, ये देखिए हमारे तकलीद करने वाले, मेरा एक एक, एक नतीजा है, हम किसी की नहीं तकलीद कर। इत्तखदा इलाहु हवा, कुरान कहता है कि उसने अपने ख्वाहिशात को खुदा बनाया। जहां द पिंचिंग मान होता है फतवा, फौरन हम उसे फ्लिप करके दूसरे मर्जा की तरफ देखते, हम लोग दीन नहीं चाहते हैं, हमारे पास दीन नहीं है, ये रियलिटी ऑफ ऑन द ग्राउंड है, इसको समझे अच्छी तरह से।
जी बिल्कुल आगा। तो अगर वो जो उनका फतवा है अपने मुज्तहिद का, उस पर
अगर उनको फॉलो करना चाहिए, जो लोग वो तकलीद कर रहे हैं हकीकत में सिंसियर तकलीद कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, आज भी हो सकता है, अल्लाह जानता है कि वो क्या करेगा साथे परवरदिगार, इसलिए कि बास को कुरान का ना मरजूना रहमत अल्लाह, रोज क्यामत कुछ ऐसे लोग मुस्तज़ाफीन जिनको जहालत जहालत की दुनिया पे ले जाया गया, डेलिबरेटली मुस्तज़ा बनाया गया, ऐसे लोगों को खुदा जो है खुदा जानता है कि आदिल है, अल्लाह की रज़ा आदिल है, जानती है कि इनके साथ क्या ठीक।
बहुत शुक्रिया का, बहुत शुक्रिया,
सलामत रहे,
खुश रहें,
अल्लाह सलामत रहे।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
लाहौर से जी। अब अभी आपने एक हदीस कुदसी में मेंशन किया था कि दुनिया में राहत रखी ही नहीं है, जबकि एक हदीस कुदसी जो कि बहुत ज्यादा सुनने में आती है और मेरे हर वक्त दिमाग में रहती है, जो कि उसमें कहा गया कि मैं वैसा ही हूँ जैसा मेरा बंदा मुझसे गुमान रखता है, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है।
कंफ्यूजिंग नहीं है, देखिए खुदा राहत जिसको कहते हैं, जिसको पीस सुकून आराम नहीं है, करार नहीं है दुनिया, माँ के शिकम में करार है, फिर करारी मकीन, जिसको माँ के शिकम को अरबी में जनीन कहते हैं, जनीन के माने जन्नत, अगर जन्नत है तो माँ के शिकम, फिर उसके बाद जन्नत में करार है। ये जो बेचैनियां मुसीबतें बचपन से लेकर के, खुलकल इंसान फी कबद, कुरान की आयत है, कुरान की आयत हदीस कुर्सी के मुकाबले में जब कुरान की आयत आती है तो आगे बढ़ गई बात। कुरान कहता है इंसान को हमने फी कबत यानी डिस्ट्रेस में पैदा किया, मुश्किलात में पैदा किया, ये दुनिया ही है काहे के लिए, उसके अंदर एक जौहर है वो उभरना है, वो जौहर क्या है, वो जो आप बता रहे थे जैसे कुर्सी की वो जुमला ज़ाते परवरदिगार से मुतालिक, जो हुस्न ज़न रखता है, हम सब हुस्न ज़न रखते हैं मगर हमारे लेवल ऑफ हुस्न ज़न अलग है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसमें करार और उसमें, नो नो कॉन्ट, इसीलिए कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारा जिक्र परवरदिगार, तुम कितनी दौलत कमा लो, कितना है कुछ कर लो, लेकिन दो रकात नमाज जो देती है कोई और चीज नहीं देती।
यानी अगर कोई इंसान ये गुमान रखता है खुदा से कि वो उसके लिए दुनिया में राहत पैदा कर दे, तो वो उसके लिए दुनिया में राहत पैदा कर देगा, या
वो राहत जो है, जो डेफिनेशन ऑफ राहत है, एक घर है जिसमें एक कमरा है जिसमें सुई नहीं है, अंधेरा है, मैं तलाश कर रहा हूं, नहीं मिलेगी वहां। हमारी डेफिनेशन ऑफ राहत देखना है कि राहत के माने क्या है, और कोई एक ऐसी चीज का मैं तसव्वुर कर रहा हूँ जो नहीं है, और कह रहा हूँ कि मैं हुस्ने ज़न रखता हूँ अल्लाह के मुताल्लिक, अल्लाह के साथ खुद कह रहा है खुलकल इंसाना अजूला, खुलकल इंसाना खुलकल इंसानो अजूला, इंसान को हमने उजलत में, फी कबद कबद, ये तो आए तो हिला देती कि इंसान डिस्ट्रेस में है, पूरी जिंदगी उसकी मुश्किलात में है, कौन बताइए, आप अपनी जिंदगी से लेकर के चारों तरफ अपने जो लोग पैसे वाले हैं घर वाले हैं जिनके पास दौलत, सबके पास जाइए, कोई है मुतमईन, कोई है राहत में, कोई नहीं है, एक एल्यूजन है, अदर साइड ऑफ द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीन, दूसरी तरफ वो जो ग्रास है समझते हैं कि वो ग्रीन है, दूर के पहाड़ सुहाने हैं।
राइट जो जैसा कि जो मेरे लिए राहत है बेसिकली, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे लिए राहत है कि मेरे लिए अच्छा खाना है और मैं अच्छा खाना की एक्सपेक्टेशन रखती हूँ तो मुझे अच्छा खाना मिलेगा, उससे मुझे राहत मिलेगी, इज दैट राइट?
नहीं, असल में हम लोग जो दो चीजें हम लोग मिक्स कर रहे हैं, एक वो चीज है جو انسان کے روحی اور وجود میں اس کے ایک پرسکون کا سمندر کی طرح کیفیت پیدا کر دیتا ہے. امام خمینی جانے سے پہلے کہتے ہیں میں قلبی مطمئن, بہت ہی مطمئن اور بہت ہی راحت و آرام کے ساتھ میں اپنے پروردگار سے ملنے جا رہا ہوں. لیکن جب زندگی کو دیکھتے ہیں ان کی, کہیں پر ایک لمحہ بھی جو ہے زندگی میں راحت نہیں تھی. لیکن جو رابطہ ہے اللہ سے, وہ رابطہ راحت و آرام کا رابطہ ہے. وہ بتا رہا ہے اس ڈسٹریس دنیا میں, اس قبض میں بھی انسان مطمئن رہ سکتا ہے اگر وہ اللہ سے مربوط ہے.
آگا کل میں نے مبشر بھائی سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کیا ہم لا آف اٹریکشن پہ کوئی ایک سیشن رکھ سکتے ہیں.
انشاءاللہ یہ یہ سیرا پہ چار ختم ہو جائے پھر انشاءاللہ نیا شروع کریں گے. لا آف کیا بتا رہی ہیں؟
لا آف اٹریکشن.
اٹریکشن جی ضرور ضرور.
کشش ہوئے جی جی کہ جو انسان سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے, چاہے وہ نیگیٹو سوچ یا پازیٹو سوچ.
ٹھیک,
تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.
جو لوگ سوال کر رہے ہیں اپنا سٹی مینشن کر دیجیے. جی ڈاکٹر شگفتہ, جی رانا ضیاء. جی
جی السلام علیکم. میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ جو قرآن کی صورتیں ہیں, فار ایگزامپل سورہ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, اس طرح کی سورہ سورہ نبا ہے, ان صورتوں کی فضیلت بہت اچھی بیان کی گئی ہے کہ ان کو ریسائٹ کرنے سے ہر صورت کا اپنا ایک بہت اچھا پازیٹیو امپیکٹ جو نبی پاک کی حدیثوں کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے. ایک یہ آپشن ہوتی ہے, اور سیکنڈ آپشن یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو چونکہ ڈیفینیٹلی ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ بھی بندہ انوالو ہوتا ہے, تو واٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ شوڈ وی چوز اینڈ ریسائٹ دا سیم سورہ ایوری ڈے, اور شوڈ وی لیو دیٹ پارٹ, اور وی شوڈ گو فار, بیکاز کہتے ہیں نا کہ 100 آیات کم از کم یا 50 آیات آپ کو پر ڈے کرنی چاہیے. تو ان دیٹ سینیریو کہ ہم قرآن میں سے کوئی مطلب ایک پراپر آرڈر سے اسٹارٹ کر دیں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنا, اور پھر آف کورس ہم لوگ ریپیٹیڈلی سیم سورہ ہر روز ریپیٹ نہیں کریں گے, تو وچ از ہائیلی ریکمینڈیڈ ان دیٹ سینس. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ سورہ یاسین کو پڑھتے ہیں تو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اس کے کچھ پرابلمز ہوتے ہیں یا کچھ, تو تھوڑا سا گائیڈنس دیجیے گا اس چیز میں کہ بندے کو کون سا وے زیادہ ڈیپ کرنا چاہیے.
It's a beautiful question. We all are involved. ہم لوگ پورے لوگ پریشان ہیں اسی سلسلے میں. اصل میں ہمارے ہاں جو ذہنیت پیدا کی گئی ہے وہ عمل کی ذہنیت, عمل پر فکر کی ذہنیت نہیں ہے. اور ہم لوگوں کو کسی نے کہہ دیا فلاں اتنی مرتبہ یہ پڑھو تو فوراً تسبیح لے کے بیٹھ گئے, اور تمہاری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اتنی مرتبہ یہ کرو. بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, اس کا کوئی ان کا ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. ایوری ایکشن ہیز اٹس اون ریئیکشن. ٹھیک ہے, ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ کہنے کے بعد یہ کہوں گا میں, بہت ہی اچھی طرح سے سمجھ جائیے, آپ تفسیر نمونہ لیجئے, آپ کے لیے بہتر میرے جیسے لے کے ہم لوگ لے لوگوں کے لیے, اگر ہائر جن کو پڑھنا سمجھنا ہے وہ تفسیر المیزان ہے, لیکن عام لوگوں کی جوانوں کے لیے خصوصاً ایجوکیٹڈ طبقے کے لیے دا بیسٹ تفسیر آئی کین پرسکرائب فار یو از نمونہ, جس میں 10-12 مجتہدین نے انڈر دی سپرویژن آف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی لکھی ہے. اردو میں بھی ٹرانسلیشن خوبصورت مولانا صفدر حسین صاحب نے, جب خدا انشاءاللہ درجات عالی کرے, انہوں نے ان کی بہت بابرکت زندگی رہی ہے, انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اور اردو پڑھنے والوں کی اتنی بڑی صاف تفسیر نہیں ہے کسی کے پاس. دوسری چیزیں ہیں, دوسری تفاسیر ہیں, لیکن یہ تفسیر جس کو تفسیر کہنا چاہیے, یہ بتانے کے بعد اس میں بہت اچھی بحث ہے. یہ سورہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہے, یہ سورہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے, یہ سورہ اگر روزانہ پڑھیں گے تو کیا معنی ہے پڑھنے کے, یاسین شروع کر دیا, آئی ہیو ٹو ریسائٹ یاسین, پڑھنے کی یہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین آخر تک فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, کیا معنی ہے اس میں بحث. بحث یہ ہے کہ پڑھنے کے معنی صرف ولا رتل للقرآن ترتیلا, لا تحرک, لا تحرک لسانک بے لتعجل, لسانک لتعجل بے, اپنی زبان کو جلدی جلدی مت چلاؤ تاکہ یہ پورا قرآن ختم ہو جائے. نہ نہ نہ, ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آہستہ سمجھ کے کنٹمپلیشن बेस्ट वे अगर फैमिली के साथ चाहते हैं आप कोई कोई मंजिल तक ले जाना बच्चों को, अपने आप को, पूरे खानदान, अपने घर को, बेहतरीन चीज है कि शुरू करें सूरह अलहम से तफसीर। रोजाना डिनर टेबल पर आधा घंटा दें खाने से पहले, और एक देखिए एक साल के अंदर पूरे घर में कितना नूर, कितनी हालत बदलेगी।
जी माइक अनम्यूट कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम मैडम साहब, मैं बेसिकली मुंबई सिंह से हूँ, लेकिन इन दिनों में फैसलाबाद में मतलब इंटर्नशिप आई हूँ। मेरा सवाल ये है, मतलब मैं पूछना कुछ और चाह रही थी, लेकिन आज अभी कुछ ही घंटे जो है ना मेरे साथ ये, मैं और मेरे फ्रेंड के साथ ये जो है ना बात हुई है, हम हॉस्टलर हैं इधर, तो मेरी फ्रेंड जो है वो भी अले तशई की है और मैं भी, तो उसने ना मतलब जो हमारा रूम है उसमें उसने स्पीकर पर जो है ना नोहे चलाए, और नोहे भी वो जिसमें सिर्फ आले मोहम्मद की जो है ना शान बयान की जा रही है, जैसे नदीम सरवर के नोहे होते हैं। तो पहले लड़कियां आई, उन्होंने बोला कि आप इसका वॉल्यूम कम कर दो, तो हमने उसका वॉल्यूम कम कर दिया, तो फिर वो चली गई, उसके बाद उनकी सारी रूममेट्स आ गई, उन्होंने बोला कि आप ये चीज जो चला रहे हो ये बंद कर दो, इसके अलावा आपकी मर्जी आप जो चलाए। उस पर हमने बोला कि हम क्यों बंद करें ना, तो मेरा सवाल ये, अच्छा फिर बाहर जाकर कहती है लड़कियां काफर हैं, इनके साथ जो है ना खाना पीना सही नहीं है, ऐसा क्यों है अलामा साहब?
जी हाँ, बाकायदा ये मिशन है, इसके लिए हम लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। हमारे पास भी बहुत सी खन्नास चीजें हैं, उनके पास भी खन्नास मौजूद है। आज मुसलमान को जो बहस करना है, आज यमन के मुसलमानों की क्या हालत है, आज इराक में क्या है, सीरिया में क्या है, ये दर्द मुसलमान, मुसलमान एक बॉडी की तरह से है, एक बॉडी को जुदा किया जा रहा है, रोजाना टुकड़े किया जा रहा है, हमारे एहसास खत्म हो रहे हैं, हमारा लव एंड अफेक्शन खत्म हो रहा है। इसीलिए इन बातों में उलझना ही नहीं चाहिए। ग्रेटर जो बात है हमारी, यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स, इस्लाम के मेन खतूत क्या है, मेन गाइडलाइंस क्या है, उस पर काम करना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
अल्लामा साहब, मैं एहतिशाम अब्बास जी, मैं इंडिया से, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बैंगलोर में अभी जॉब करता हूँ। तो मेरा एक सवाल, दो सवाल था जिसका जवाब तो एक मिल गया कि तफसीर नमूना के बारे में आपने बताया, और दूसरा ये सवाल है जिसका जवाब मुझे मिल जाता है लेकिन मुझे इत्मीनान नहीं होता। जैसे एक मौला की हदीस थी, फरमा कुछ कौल था कि मैंने अपनी उम्मीदों को टूटने से खुदा को पहचाना, कुछ इस तरह से था, तो ये मुझे मतलब समझ नहीं आता।
जी,
तो क्या इस पर थोड़ी सी आप मुझे तफसील बता सकते हैं, किस तरह से खुदा को पहचाना मौला कायनात ने जब उनकी उम्मीद टूट गई?
इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। असल में देखिए, मोमिन वो है जिसका राबेता, जो जिंदगी उसकी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, ये है सबसे बड़ा अहम जुज और बहुत अहम फलसफा है। तौहीद हमारी जिंदगी, अव्वलुद्दीन मारिफत, फर्स्ट स्टेप इन रिलीजन मजहब में अल्लाह की मारिफत। अल्लाह ताला की मारिफत जितनी होती चली जाएगी तो मैं इस्तेकलाल ही नहीं रखता, कोशिश कर सकता हूँ, बिल्कुल कोशिश करने में मुझे कोई रोका गया नहीं गया है, मैं आजाद हूँ, मुख्तार हूँ, कोशिश करने के बाद किसी मंजिल पे पहुंच जाऊं ये गारंटी नहीं है। कहीं ना कहीं हर्डल्स आते हैं, कहीं ना कहीं परेशानी आती है, तो मौला अमीर मोमिनीन उसकी तरह, बहुत से लोग ऐसे हैं कि अल्लाह की पनाह है, मैं कानून से सुन चुका हूँ, जरा सा मुसीबत आई तो कहाँ है खुदा मेरा, आप कहाँ ऐसा है, मैंने इतनी नमाज पढ़ी, मैंने ये कहा, इतना मौला को पुकारा, कहाँ है मौला उसका। ये नेगेटिव जो थिंकिंग है वो तौहीद के खिलाफ है। मौला अमीर मोमिनीन यहाँ पर हमें अलैहि अफजलुस्सलातु वस्सलाम गाइड कर रहे हैं, इंसान की जिंदगी में प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज आर देयर, आने वाले हैं, मुश्किलात आने वाले हैं, उनको लुक करने का, उनको देख करने का, देखने का सलीका होना चाहिए। देखने का क्या सलीका है? तौहीदी सलीका। तौहीदी क्या है? जब कभी मुश्किल, अरफ्त और रब्बी, अल्लाह की पहचान का कई रास्ते हैं। देर आर सो मेनी वेज टू अंडरस्टैंड अल्लाह सुबहाना तआला की मारिफत। एक मारिफत का तरीका मौला फरमा रहे हैं, जहां पर मैं इरादा बनाया, पूरा प्रोग्राम बनाया, रोजाना मैं घर से निकलता हूँ, ऑफिस को इस टाइम पे निकलता हूँ, इस टाइम पे पहुंच जाता हूँ, लेकिन एक दिन जब निकला तो आगे बढ़ा तो वहां बंद, वहां बंद, वहां बंद, जो ऑफिस को मैं जहाँ 15 मिनट में पहुंचता था, एक घंटा हो गया। ये जो हर्डल्स पैदा हुए हैं उसका इल्म मुझे नहीं था। ये हर्डल्स को मौला फरमा रहे हैं, ये मुश्किलात को, इससे पहचाना कि मैं लाख प्रोग्राम बनाऊं मगर असल प्रोग्रामर तू है। मुझे कोशिश करना, कोशिश में थकना नहीं है। ये कितनी खूबसूरत चीज है कि इंसान पॉजिटिव लुक, कहते हैं जिसको, इंसान अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लुक पैदा करे, ये बजाय इसके कि रिएक्ट करे कि ये कैसा हो गया, ना ये हुआ। मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दुआ है, शायद सातवीं दुआ है या 25वीं, बहरहाल एक दुआ का एक टुकड़ा है। इंसान की दो हालतें हैं, एक अच्छी हालत, एक मुश्किल की हालत, एक परेशानियों की हालत। मौला फरमाते परवरदिगार मैं किन हालत में तेरा शुक्रिया अदा, इसलिए कि जब अच्छी हालत होती है तेरा शुक्र अदा करना ही चाहिए। जॉब अच्छी, सेहत अच्छी, औलाद अच्छी, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब परेशान होता हूं तो मैं देखता हूं तुझसे करीब हो जाता हूं। तो इसके माने कि परेशानी कितनी खूबसूरत है कि जो अल्लाह से करीब कर दे। तो ये दौलत को कितनी बुरी चीज है, ये अच्छाई कितनी बुरी चीज है कि मैं अल्लाह से दूर हो जाता हूं।
बेशक सही फरमाया आपने, शुक्रिया जनाब।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मौलाना मेरा नाम सज्जाद रजा है, कराची से बात कर रहा हूँ।
बड़ी खुशी है जी।
मौलाना मेरा मेरा एक सवाल तो नहीं है लेकिन मेरी एक सजेशन है, और वो सजेशन ये है, मैं 1991 में जॉब करता था एक आईटी कंपनी में, ना वहाँ सपोर्ट देता था। तो हमारे पास एक क्रिश्चियन आया, और वो आया था शायद बैंकॉक वगैरह से, ना थाईलैंड से आया था। तो उसके बाद उस जमाने में एक हैंडी कंप्यूटर था, और उसमें वो जमाने में डिस्क लगा करती थी। तो वो उसने हमारे पास एक सॉफ्टवेयर, हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलप करती थी जिसके जिसका जो अभी तो आप हम विंडोज आप देख रहे हैं ना, विंडोज एक बनी हुई उसमें काम कर रहे हैं, उस जमाने में डॉस हुआ करती थी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसने कहा कि मुझे, हमारा एक सॉफ्टवेयर था जो हमारे बॉसेस ने काम किया था, मैं सिर्फ सपोर्ट में काम करता था। तो उसकी सॉल्यूशन, ये वो जो मसले मसाइल आते थे वो हम प्रॉब्लम लिख दिया करते थे। हमारे बॉसेस ने अरबी के लिए काम किया था, तो उन्होंने उर्दू के लिए भी सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया पाकिस्तान में। तो उस मेरा कहने का मकसद है, उसने हमसे जो है वो सॉफ्टवेयर लिया, अपने हैंडी कंप्यूटर में चलाया, और उसमें चला के उसने देखा कि जो राइटिंग की अलाइनमेंट है वो उर्दू बेस्ड हो गई है। तो उसने चेक किया, उसने अपने डेटा बेस में कॉल किया, कुछ उसने एंट्रीज की, उसने कहा ये ओके। हमने उससे पूछा कि आप ये किस मकसद के लिए लेना चाहते हैं, तो वो कहने लगा मेरे पास बाइबल और कुरान का कंपैरिजन है। उन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था। अब उसने लिखा है, देखें अगर हम उसमें लिखते हैं सिन, गुनाह, तो गुनाह की चीजें कहाँ कहाँ किस में ज्यादा है, बाइबल में ज्यादा है। ये मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में बिल्कुल यंग था मैं, तो और मेरी जॉब स्टार्ट हुई थी जी जी। तो वो तो वो उसने मुझे करके दिखाई, बिना हमने उसने में दिखाया इंडेक्स, वो दिखाया इंडेक्स दिखाई और गुनाहों का वो दिखाया दोनों में। अभी मैंने तवा से, मेरे भाई एक अमेरिका में डॉक्टर हैं, वो भी ये इस किस्म के जो प्रोग्राम है आपके उनके वो मैनेज करते हैं, कुछ मजालिस के हैं, कुछ दुआओं के हैं, और उस तरह इस तरीके से। तो मेरी सजेशन ये है कि आपके प्लेटफॉर्म से आप एक, हमारी एक लेयर है जाहिर है, एक बेदार जो जो होते हैं, एक साहिबे कुछ बहुत पढ़े लिखे होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा उल्मा लेवल के, उल्मा उल्माओं में एक अपर लेयर होती है जो मुश्तहिदीन की होती है। मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ ना, कुछ गलत तो नहीं कह रहा कुछ।
जी, जी, जी।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे यहाँ करोड़ों में, लाखों में, पता नहीं कितनों में, कितने मैं कहना नहीं चाह रहा, हमारे यहाँ खुम जमा होता है। हम लोग क्यों नहीं एक ऐसा डेटाबेस बना लेते जो जो देखें सबसे ज्यादा जो मशहूर लैंग्वेजेस हैं उसमें इंग्लिश, अरबी, उर्दू, फारसी, और फारसी में बहुत अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। हम कोई ऐसा डेटाबेस बना लें जिसमें जितने भी, जैसे पाकिस्तान में जितने भी जिन्हें मतराजिम किए हैं अहले तशीज में, और कुछ मैंने देखा है कि मैं एक दिन प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों की एक छोटी सी ऐप बनाई है और उस ऐप में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। मैं सिर्फ आपके प्लेटफॉर्म से चाहता हूँ कि आप जैसे जो उलमा है वो अपने सर्किल में और इस अपर लेवल पे एक ऐसा डेटाबेस बनाने की कोशिश करें, मेरी सजेशन है। उसकी रीजन ये है, वो डेटाबेस हमें क्या करेगा, हमें दुनिया, देखे ना आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कराची में बैठा हूँ, ये हमें कंबाइन कर दिया। हम एक ऐसे डोमेन पे यकजा हैं जो अहले बैत अलैह सलाम का डोमेन हैगा, और जो हमें परवरदिगार आलम के आगे जब सुरफरू करेगा, हम उनके थ्रू, हम
अच्छा
उन्हीं की हिदायत के थ्रू। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम बस, लेकिन मैं सिर्फ आपसे, इससे मेरी दरख्वास्त ये है कि हम एक ऐसा डेटाबेस बना लें जिसमें कुरान मुख्तलिफ लोगों के तर्जुमे जो हमारे यहाँ हैं, और जो दूसरे जो अहले सुन्नत में और दीगर जो मजाहिब में हैं उनसे, मजहब से रिलेटेड, और हमारे यहाँ जो अहादीस हैं हमारे यहाँ और अहले सुन्नत में। अभी आपने पाकिस्तान में अली उन वलीउल्लाह का टॉपिक देखा होगा कि लोग जो है उस पर लड़ पड़े, उसके बाद पिछले साल जो है वो जियारत पढ़ाई जा रही थी, जियारत आशूरा, तो उस पर मामला हुआ। तो हम अगर एक ऐसा डेटाबेस बना लें जिसमें तमाम, आप, मैंने एक रेफरेंस देखा था, एक खातून वकील थी जिन्होंने जनाबे फातमा सलामुल्ला अलैहा के बागे फिदक के टॉपिक को छेड़ दिया और कहा कि ये जो है, अगर इंसाफ वहीं मिल जाता तो आज बेइंसाफी ना होती, और वो बात क्लिक कर गई और पूरे मीडिया में छा गई और उसमें मुख्तलिफ चीजें। अच्छा, ये हुआ, फिर अली उन वलीउल्लाह वाला मसला आया, फिर अभी रिसेंटली कई लोग जमा हुए अपोजिट साइड से, फिर उनको कन्विंस किया गया कि भाई ऐसा नहीं है। तो हम एक, और जो फिर हम, हमारे यहाँ से जितने भी उलमा हैं, जिसमें एक साहब अमेरिका में शहरियार साहब हैं, उन्होंने जनाबे फातमा सलामुल्लाह अलैहा से रिलेटेड जो चीजें हैं उधर की भी और इधर की भी उन्होंने डिफाइन की, उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए, फिर शहनशाह नकवी साहब की भी वीडियो आई, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें जो है वो मंजर आम पे लाए और उन्होंने रेफरेंसेस दिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी अहादीसें और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमारे जो लोग हैं वो इस एक डोमेन बनाकर इसको यकजा कर सकते हैं, और इसमें अहले तशी हजरात और अहले सुन्नत, क्योंकि हमारे जितने भी आलिम हैं जब जवाब देते हैं तो कहते हैं भाई आपकी किताब से दिया गया है, ठीक है ना। अभी एक बोल चैनल यहाँ पे होता है और उसमें जो है ना, वो उनका इंतकाल हो गया, मौलाना लामा, क्या नाम था इनका, जो जो उनका मौलाना क्या नाम था जिनको कहा गया था, एक हदीस है जो अहले सुन्नत वाले कहते हैं कि वो जरा और तलवार बेचने के हवाले से थी कि जनाबे मौला अली अलैहि सलाम की, और फिर उन्होंने गवाही दी, उन्होंने कहा भाई कुरान में इतनी जगह गवाही मौजूद है, ये सच्चे लोग हैं, इसको कुरान कह रहे हैं सच्चे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये कि अगर हम एक डेटाबेस बना लें और उस डेटाबेस में सामने वालों के रेफरेंसेस भी जाए, ये जो मौलाना थे जिनका इंतकाल हुआ है, क्या नाम उनका, जो जिन्होंने बताया था बोल चैनल में आए थे और उन्होंने उनका जवाब दिया था, और बहुत ही ऑथेंटिक जवाब दिया था उन्होंने, फिर उसके बाद हमारे एक और अमीन शहीदी साहब ने भी जवाब दिया था। मेरा कहने का मकसद ये कि अगर हम ऐसे डेटाबेस डेवलप कर लें मल्टीलिंगुअल, यानी एक से ज्यादा लैंग्वेजेस के, हाँ, जमीर अख्तर नकवी साहब की वो क्लिप थी और वो बहुत वायरल हुई थी, और वो उन्होंने देखे मौलाना मौलाना हजरत, अगर आलिम हजरत, मैं जब बोलूंगा आलिम हजरत किसी भी जगह के हों, मतलब किसी भी, थोड़ा बहुत कुछ लोग अली उन वलीउल्लाह वाले भी हों चाहे दूसरे हों, लेकिन वो बात क्या कह रहे हैं, मौला अली का कौल है, तो ये बात क्या कह रहे हैं, तो वो हमें ये देखना पड़ता। उन्होंने जो जवाब दिए हैं उनमें जो शहादतों के हवाले से कि फलां की गवाही फलां देगा, इस नबी की गवाही उनका बेटा देगा, और क्या मौला अली को पता नहीं था, आगे अगर हम वो क्लिप देखें तो उसमें पता चलता है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हम अपने डेटाबेस को डेवलप कर लेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस किस्म का सवाल करे, कोई भी, फिर इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल जो है ना वो वर्किंग नहीं रहेगी, बल्कि कंबाइन वर्किंग हो जाएगी। उससे क्या होगा कि इंडिया के जो उलमा हजरात हैं और इराक के हैं, ईरान के हैं, अगर कोई शाम किसी भी दुनिया में बैठ के वो अपनी चीज़ों को फॉरवर्ड करें, उसे कंपाइल करें, उसको एथेंटिकेट करें, बड़े उलमाए मुश्ताहिदीन उसको इवेलुएट करें कि हाँ भाई ये हदीस सही है कि नहीं है। और उसमें जो बहुत सी ऐसी हदीसें होती हैं जो मतलब है कि जो मेरी नॉलेज है कि मेरा सवाल ऐसे बड़ा हो गया, माजरा चाहता हूँ आपसे, कि ऐसी हदीस जाहिर है कि जो जो थोड़ी ज़यीफ़ होती हैं, जो डायरेक्ट होती हैं, जो इनडायरेक्ट होती हैं, तो कहने का मकसद है कि हम एक ऐसा डेटाबेस, ऐसे प्लेटफॉर्म पर जमा होकर एक ऐसी चीज़ क्यों नहीं डेवलप कर सकते। मेरा मेरा ये आपसे, आपके प्लेटफॉर्म से इस बात को फॉरवर्ड करने का मेरा यू हैगा और मेरा कुछ नहीं है, ताकि लोग ये आपस में हमारे लड़ाइयाँ। और दूसरे जो याली मदद का चक्कर है, कोई अली उन वलीउल्लाह पढ़ रहा है, तो ये मेरे भाई ने मुझसे सवाल किया था, मैंने कहा भाई ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं, कोई जंजीर के मातम को मना कर रहा है, कोई कर रहा है यहाँ जंजीर के मातम में छोटे ब्लेड होने चाहिए, कोई, तो ये सब चीजें छोटे छोटे हर्डल हैं। हम कोई बड़ा ऐसे जगह पे काम करें ताकि उसके बाद ऑटोमेटिकली ये हायरार्की, यानी जो ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, उसमें बहुत सारे मसले हल हो जाए। अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से चाहता हूं कि एक डेटाबेस इंटरनेशनली तो जो सिर्फ शियत के लिए हो, और मतलब जाहिर है हमें डिफेंड, हम अब हम दुनिया में जहां भी हैं वो डिफेंडिंग पोजीशन में। अब पाकिस्तान में देख लें, हम ऊंची आवाज में कोई बहुत सारी चीजें नहीं कह सकते, तो इसमें आप दूसरी जगहों पे भी देख लें। तो मेरा ये आपसे दरख्वास्त हैगा कि आप अपने
जी
प्लेटफॉर्म से इसको, इस चीज को जो ना अपर लेवल तक पहुंचाएं कि हमारे एक कंबाइंड डेटाबेस बनाया जाए।
मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये डेटाबेस जो आज इसकी बात कर रहे हैं मौजूद है और इस पे जितना काम हुआ है शायद किसी, आज हमारे पास जितने मालूमात कंप्यूटर यानी डेटाबेस के किताबों की, आपको मेरे पास एक ऐसा ऐप है जिसमें 30,000 से ज्यादा किताबें हैं और हर एक मौजू के एतबार से अलग 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 मौजूद है, और वो भी तो कंपेरिजन अहादीस भी। अब जो रिसर्च हो रही है उन अहादीस को जो ज़ईफ़ हैं, जो मुरसल हैं, उनको हटा करके सिर्फ सही बात, काम हो रहा है, बेइंतहा काम हो रहा है। जो काम हुआ है उसको जरा सा अरबिक पर्शियन तक है, हमको जरा सा उर्दू और इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज में लाने की जरूरत है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह।
जज़ाकअल्लाह।
तो मैं समझता हूँ वक्त हो, बहुत देर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मन लतीफ लम यजल قلت بنا فيما نزل أنت القوي نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عباده من نسلهم قد جاءنا من فضله العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والأسكري والحجة القائم پروردگار ان قليل عبادتوں کو عظيم ہستیوں کے دفاعنا قبول فرما مالک، ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، جسمانی امراض کے ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سیگونی قوتوں کو بانٹ، پروردگارا ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما، مراجع رہبر کے سائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، اپنے اپنے مرحومین شہدا کے ساتھ عطرت بطول بنت سید مظاہر حسین اخوی کے فاتح پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔